मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता। वह जैसे उसकी किलकारियां सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। एक सुशील का जो संपर्क कभी मन में ऊष्मा भरता था वही अब तपिश भरता है। फलतः अनेकानेक मधुर चुंबनों का स्पर्श भी मनोरमा के मन में रिक्तता ही उत्पन्न करता है। कारण दाम्पत्य जीवन की जटिलता संबंध भावना ने सारे रोमांस को स्नेह ग्रंथि में परिणत कर दिया है। यह ग्रंथि ही उसकी ऊब एक रस्ता और अकेलेपन का कारण है। काशी पति निपीड़ता है, उसकी पीड़ा बाहरी है किंतु मनोरमा की पीड़ा भीतरी है। नोट एक, मोहन राकेश, पहचान सुहागिने, पृष्ठ 45। पृष्ठ 76। एक पीड़ा सहकर भी प्रवंचक पति की कामेक्षा को पूर्ण करती है और दूसरी शरीर सुख के क्षणों में निरंतर शिशु की किलकारियां सुनती रहती है। मनोरमा मातृत्व की प्यासी है, सागर की लहरों से खेलती हुई भी उसके मोतियों से वंचित है, तो काशी लहरों से खेलती है, मोती भी पाती है, किंतु अभावों की सलाखों में बंद जीवन के कारण उपलब्ध मोतियों की सुरक्षा से चिंतित है। एक में पाने का भाव है और दूसरी में पाए हुए को बचाए रखने की सुरक्षा भावना अथवा चिंता है। दोनों सुहागिने हैं किंतु वरदानों से वंचित। यह वंचनामय पीड़ा ही उनके व्यक्तित्व की ऐसी नामहीन ट्रेजेडी है जो उन्हें भीतर बाहर से तोड़ रही है। एक अपरिचित राकेश की दाम्पत्य संबंधों की जटिलता को निरूपित करने वाली कहानी है। इसमें गलत चुनाव और रुचि वैभिन्न के कारण आई त्रासद स्थितियों का निश्चल अभिव्यंजन है। राकेश ने अजनबीपन, बेगानापन, ऊब और दाम्पत्यिक संबंधों के बीच आए खालीपन को लेकर अनेक कहानियां लिखी हैं, किंतु बात चाहे सामाजिक अकेलेपन की हो चाहे व्यक्ति के अकेलेपन की, राकेश हारे कहीं नहीं। यूं उनके पात्र टूट कर भी जुड़ नहीं पाते हैं और बिछड़ कर भी पूरी तरह बिछुड़ नहीं पाते हैं। वे बाहर से तने हुए, भीतर से छिले हुए और मन से एक दूसरे के लिए झुके हुए प्रतीत होते हैं। एक और जिंदगी तो इसका सशक्त उदाहरण है। यही वह बिंदु है जो राकेश को नई संचेतना, नई जीवन दृष्टि और नए किंतु गहरे यथार्थ का रचनाकार सिद्ध करता है। अपरिचित को ही लें तो इसमें अपरिचय में परिचय की तलाश साफ झलकती है। सहयात्रिणी स्त्री अपने पूरे भोलेपन से दाम्पत्य संबंधों के बीच आई कटुता, तिक्तता और रिक्तता का बोध कराती है। वह गलत निर्णय और रुचियों के अंतराल के बोझ को ढो रही है। वह मिसफिट है किंतु उसमें निर्मरता ज्यादा है, तभी तो गहने बेचकर भी पति की कोई एक साध अपने से पूरी होती देख संतोष करना चाहती है। यह एक ऐसी स्त्री है जो बहुत से परिचित लोगों के बीच अपने को अपरिचित, बेगाना और अनमेल अनुभव करती है, किंतु यही स्त्री कथानायक से खुलकर बातें करती है। कारण दोनों के बीच एक सी रुचियों का आभास है। वह पहाड़ी लोगों के बच्चों में अपनापन खोजती है तो कथानायक भी आदिम संस्कार वाले व्यक्तियों के बीच अच्छा महसूस करता है। यहीं पर दो अपरिचित समान धर्मी रुचियों की पीठिका पाकर कुछ और खुलते हैं। यद्यपि यह खुलावट स्त्री की ओर से है, वह अपनी जैसी रुचि का सहयात्री पाकर भीतर ही भीतर कहीं दूषित है, अतः उससे पानी मांगती है। एक डॉक्टर हरिचरण शर्मा की डायरी से प्राप्त मत। पृष्ठ 77। चलती गाड़ी पर जब कथानायक पानी का गिलास लेकर चढ़ता है तो उसकी सांस फूल जाती है। वह आपको धिक्कारती है कि क्यों भेजा पानी के लिए, कुछ हो जाता तो आप न चढ़ पाते तो। एक यहां पर जो संवाद है वे अपरिचय में आकस्मिक रूप से उगे परिचय और कहीं भीतर ही द्रवित मनोभावों के संकेत हैं। फिर स्त्री का कथानायक को बत्ती बुझाकर सुला देना और रजाई उड़ा देना अपरिचय में परिचय की तलाश को अंतिम रूप दे देते हैं। दाम्पत्य जीवन की कटुता और नीरसता को यहाँ नया परिचय भुला देता है, किंतु पारिस्थितिक विचित्रता दोनों को अलग कर देती है। यही विकर्षण कहानी की जान है, यथार्थ का धरातल है, जो जिस रूप में है का सही गवाह है। कथानायक भी दूषित है, तभी तो उसके अचानक किसी स्टेशन पर उतर जाने से रिक्त का अनुभव करता है। इस स्टेशन पर न उतरी हो यह सोचकर मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया और बाहर देखा। बिस्तर में नीचे को सरकते हुए मैंने देखा कि कंबल के अलावा रजाई भी लिए हुए हूँ, जिसे अच्छी तरह कंबल से मिला दिया गया है। गर्मी की कई एक सिहरने एक साथ शरीर में भर गईं। दो, असल में यह कहानी बेमेल रुचियों के कारण जीवन में आई रिक्तता, कटुता और बासीपन की कहानी है। रुचि, वैभिन्न, स्त्री पुरुष को किस सीमा तक और किस तरह अलगाव के बिंदुओं की ओर ले जाता है, तथा उसमें नारी अपने को कितनी रिक्त, विवश और टूटा हुआ अनुभव करती है। पुरुष किस तरह किसी भी बहाने उससे अलग होकर नई मूल्यवत्ता खोजता है, व स्थिति की जटिलता किस तरह अपरिचय और अजनबीपन के बीच एक नए परिचय की अगबत्ती जलाकर बुझा देती है, आदि सब कुछ इस कहानी का कथ्य है। एक और मानव संबंधों की सूक्ष्मता पूरी जटिलता के साथ यहाँ है, और दूसरी ओर मानवीय वृत्ति की सहज निश्चलता से प्रेरित अपरिचय में परिचय की तलाश। यह स्थिति इसे बदलते मूल्यों के साए में विकसित नए मानव संबंधों की कहानी प्रमाणित करती है। न कुछ से बहुत कुछ देने वाली यह राकेश की उल्लेख्य कहानी है। चौगान, चौगान राकेश की अनमेल और असमान वैवाहिक जीवन में आई यंत्रणा और कसक को व्यक्त करने वाली कहानी है। इसमें पुरुष की टूटन भी है और नारी जीवन का बिखराव भी, किंतु पुरुष की ऊब व टूटन को संतों के साहचर्य से भरने का प्रयास किया गया है। नोट, एक क्वार्टर अपरिच पृष्ठ 251, दो क्वार्टर अपरिचित पृष्ठ 153, पृष्ठ 78। संतों की वृत्तियों की आदिम स्थिति पुरुष के टूटन को अधिकाधिक उभारती गई है। दोनों मूल्यों का संघर्ष भी कहानी में किसी नए सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सका है। कुल मिलाकर कहानी पुरुष के विवशता, बिखराव और टूटन की कहानी है। यहाँ दाम्पत्य संबंध पुरुष के टूटन पीछे है। हेनरी विल्सन जो भारत के कस्बे में आकर साहब जी बनकर रह गया है, अकेलेपन की यंत्रणा का शिकार है। वह लिजी को छोड़कर अकेला हो जाता है और अकेलेपन का बोझ जब उसे काटने लगता है तो संतों को घर में रख लेता है, किंतु ट्रेजेडी तो यही है कि वह यहाँ भी अकेला ही बना रहता है। वस्तुतः यह अनुभव के अकेलेपन की कहानी है। यह अकेलापन ओढ़ा हुआ नहीं है, वरन समाज और सामाजिकों के बीच रहते मनुष्य का अकेलापन है, जिसमें मानवीय संबंधों की सूक्ष्मता जटिलता के स्तरों का स्पर्श करती हुई आदमी को भीतर से छीलती दिखाई देती है। हैरी विल्सन मरता तो बाद में है, किंतु उससे पहले अकेलेपन के क्षणों में वह कितनी ही मौतें अपने भीतर जी चुका होता है। खाली, जुगल और तोशे के दाम्पत्य संबंधों की कहानी इसमें पति पत्नी दोनों के जीवन में आई रिक्तता और ऊब का वर्णन किया गया है। दोनों के संबंधों में जो कटुता और बेगानेपन का बोध है, उसका कारण स्वभाव का अंतर है। जुगल की बगझक तोशी को पसंद नहीं है और जुगल को तोशी का रहन सहन। यही कारण है कि तोशी जुगल की बातों से अपना मन हटाए रखना चाहती है और जुगल को जिंदगी की हर चीज किसी वजह से गलत लगती है, और वह अकेला हर चीज को ठीक करने के लिए क्या कर सकता था। एक, फिर भी दोनों साथ साथ रहते किंतु निरंतर खाली होती जाती जिंदगी राकेश ने इस कहानी में दाम्पत्य संबंधों की ऊब, निरस्ता और अकेलेपन को सफलता के साथ अंकित किया है। फौलाद का आकाश के रवि और मीरा ने स्वेच्छा से एक दूसरे को चुना है, किंतु उनका विवाह चुनाव विवाह के कुछ ही वर्षों बाद गलत सिद्ध होने लगता है। वे एक औपचारिक और कृत्रिम जिंदगी जीते हैं। रवि मीरा से अपना प्रत्येक काम तकल्लुफ से कराता है। वह उसे बाहों में भरने का प्रयत्न करता हुआ पूछने लगता है, मेरे साथ अपनी जिंदगी तुम्हें बहुत रूखी लगती है ना? कहकर किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह कुछ भी बोलने से पहले उसके होठों को अपने होठों से भींच देता है, फिर फुसफुसाकर कहता है, मैं बहुत बुरा हूं ना। नोट एक, क्वार्टर खाली, पृष्ठ 44, पृष्ठ 79। इस पर भी उसे किसी उत्तर की आशा नहीं रहती, वह अपने आप सवाल पर सवाल किए जाता है। मैं तुम्हें बहुत दुखी करता हूँ, नहीं, पर अब तो तुम्हें सहने की आदत हो गई है, नहीं। साथ ही उसके हाथ उसके शरीर को मसलने लगते, उसके दांत जगह जगह से उसके मांस को काटने लगते हैं। साथ ही यह भी, तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, नहीं। और मंजिल दर मंजिल शारीरिक निकटता की हदें पार हो जाती हैं। आखिर जब पसीना पसीना होकर वह उससे अलग होता तो भी मीरा को यही लगता जैसे अब भी लिखते लिखते हाथ थक जाने से उसने कागज पर से हटा लिए हों और अब पानी का गिलास मांगने जा रहा हो। एक, यह अंश उसके जीवन की झांकी देने में समर्थ है। रवि अपनी फैक्ट्री के कार्य में बहुत व्यस्त रहता है। फैक्ट्री में हड़ताल होने पर जो व्यक्ति मध्यस्थता करने के लिए बाहर से आता है वह उसके खाने के मेनू में संशोधन करता है, किंतु घर में सामने प्लेट में पड़ी चीज की ओर देखता भी नहीं। उसे मीरा की भावुकतापूर्ण बातें पसंद नहीं। रवि की बातें उसे रवि से बहुत दूर कर देती। उस फासले को भरने की कोशिश उसे एक ऐसा झूठ लगता था जो वह 10 साल से लगातार अपने से बोल रही थी। रात दिन साथ रहकर भी फासला कम नहीं होता। जितना ही वह उसके नजदीक आती फासले का एहसास उतना ही ज्यादा होता था। दो, वह अपने तथा रवि के साथ पढ़ने वाले राजकृष्ण से मिलती है तो वह उसे बहुत आत्मीयता से मिलता है। राजकृष्ण को देखा है कि उसने मीरा से विवाह क्यों नहीं किया। वह अपनी तनाव भरी जिंदगी के कुछ क्षण मीरा के सानिध्य में रिलैक्स करना चाहता है, पर मीरा शीघ्र ही वहां से घर लौट आती है और लेट जाती है। उनका मन स्वस्थ नहीं, पर रवि के व्यवहार में पूर्व परिचित उदासीनता है। इन दोनों की जिंदगी ऊपरी स्तर पर तो बिल्कुल ठीक है, किंतु उनके जीवन में जो अलगाव है वही इस कहानी की मूल संवेदना है। फौलाद का आकाश कि मीरा में तनाव है, असमंजस है। वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती है। कभी उसे लगता है कि वह इस जीवन के लिए जिम्मेदार है, कभी ऐसा लगता है कि सारा दोष रवि का है। इस युगल के मध्य जो तनाव है, एक दूसरे को निरंतर झेलते जाने की मजबूरी है, इसका कारण रवि के व्यवहार की औपचारिकता और मीरा के व्यक्तित्व की व्यक्तिनिष्ठता व भावुकता है। रवि आंकड़ाबाज है। उसके इस व्यवहार से मीरा को बराबर यह लगता रहता है कि उसकी बात में शब्द कम आंकड़े ज्यादा होते हैं। नोट एक, क्वार्टर फौलाद का आकाश, पृष्ठ 182। दो, बही वही, पृष्ठ 187, पृष्ठ 80। आंकड़े आंकड़े आंकड़े, बिना आंकड़ों के तो रवि की कोई बात हो ही नहीं सकती। मीरा को लगता कि उससे प्यार करते वक्त भी वह मन ही मन चुंबनों की गिनती करता रहा होगा, तभी तो ना पूरे आवेश में एक चरम पर पहुंचकर रुक जाता। एक, मीरा का राजकृष्ण को न भूल पाना, उससे मिलने जाना और मन ही मन रवि की औपचारिकताओं व बेरुखियों को सहते जाने में जो भाव है वह दाम्पत्य जीवन की पीड़ा को ही व्यक्त करता है। लगता है मीरा का मन रवि के कारण भीतर ही भीतर इतना छिल गया है कि उसे उसकी साधारण सी बात में भी बेगानेपन, उपेक्षा और कृत्रिमता की गंध आती है। यूं उसका ऐसी गंध पाना गलत भी नहीं है, गलत है तो दोनों का चुनाव। मीरा में बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदलने और गर्म गर्म झोंकों को सहने की शक्ति कम दिखाई देती है। फलतः कहानी बदलते हुए समाज की जीवंत समस्या को छूती तो है पर उससे टकराती नहीं। दो, मीरा का रवि के अनुकूल ढल पाना और अपने को रवि के अनुसार न ढाल पाना ही वह कारण है कि जिससे दाम्पत्य संबंधों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। मानव संबंधों की भूमिका पर लिखी गई कहानियों में राकेश ने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी हैं जिनमें न केवल संबंधों में आई कटुता और उदासी का चित्रण है, अपितु परिवर्तित मानवीय संबंधों की भूमिका के साथ मर्यादाओं के ह्रास का भी चित्रण किया गया है। मर्यादाओं के ह्रास का चित्रण सूक्ष्म स्तर पर करने वाली कहानियों में वासना की छाया में, रोजगार, आखिरी सामान, हक हलाल, गुनाह बेलज्जत, मिट्टी के साए आदि कहानियों को लिया जा सकता है। मर्यादाओं का ह्रास और मूल्यों का विघटन इन सभी कहानियों में मिलता है। राकेश ने मानवीय संबंधों के अंकन में अपरिचय, ऊब, बेगानापन और अनमेल स्वभाव और रुचियों का चित्रण तो दिया है, किंतु कहीं भी वे आस्था का संबल अपने हाथ से छोड़ नहीं पाए हैं। लगता है वे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि मानवीय संबंधों की नियति उनके टूटने और बिखरने में नहीं है, अपितु नए मूल्यों की खोज और प्रस्थापना में है। जंगला कहानी में रूढ़ियों पर मूल्यों की विजय चित्रित की गई है। कहानी का संदेश या कहें कि तथ्य ही यह है कि या तो पुराने को मिट जाना है या बदल लेना है। ध्यान से देखें तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राकेश की कहानियों में स्त्री पुरुष के संबंधों की तमाम कटुता के बावजूद एक दूसरे पर निर्भर बने रहने की मजबूरी ही अधिक अंकित हुई है। नोट: एक, क्वार्टर, फौलाद का आकाश, पृष्ठ 186। दो, शिव प्रसाद सिंह, माध्यम, जनवरी 1968, पृष्ठ 64। पृष्ठ 81। यह वह मजबूरी है जो सारी ऊब, वेदना और उदासी जनित अकेलेपन के बावजूद उन्हें एक दूसरे से बांधे रहती है। यही निर्भरता चाहते संबंधों की मजबूरी सुहागिने में है, किंतु यह मजबूरी यदि कहीं टूटी भी है तो दोनों के मन के भीतर ही भीतर फिर से एक नया राग पैदा होता रहता है। ऊपरी विवेचित कहानियों में दाम्पत्य जीवन की ऊब, निरस्ता, असफलता को अभिव्यक्ति दी गई है। कुछ कहानियों में मानवीय संबंधों व प्रेम का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर भी किया गया है। बनिया बनाम इश्क, गुनाह बेलज्जत, वासना की छाया में, हक हलाल ऐसी ही कहानियां हैं। बनिया बनाम इश्क का इंद्र नाचने वाली से प्रेम करता है व उसे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता है, किंतु जब वह खर्च के लिए 1000 रुपया महीना मांगती है तो वह कहता है 200, 400, 500 तक हो तो इंसान खर्च कर सकता है, मगर 1000 रुपया? मानता हूँ खूबसूरत है, वह बोला, मगर इतनी भी खूबसूरत नहीं है। एक, हक हलाल में पंडित ने रुपया देकर लड़की से विवाह किया है जिससे वह उस पर पूरा अधिकार समझता है। एक दिन लड़की के भागने पर वह बदले में उसकी बहन को ले आता है। जब भागी हुई लड़की पकड़कर ले आई जाती है तो वह छोटी बहन को भी दया करके रख लेता है। कोई उसे पत्नी के लौट आने पर मुबारकबाद देता है तो वह कहता है, आपकी परवस्ती थी हुजूर, परमात्मा का इंसाफ था और मेरा हक हलाल का पैसा था। दो, वासना की छाया में के विधुर चौधरी को जब पत्नी के रूप में कोई स्त्री नहीं मिलती तो वह अपनी 14 वर्षीय लड़की के बदले में ही दूसरे चौधरी की लड़की से ब्याह करने का निश्चय करता है। चौधरी और उसकी वासना की हविश के माध्यम से राकेश ने पिता पुत्री के संबंधों का ह्रास चित्रित किया है। कहानी का चौधरी एकमात्र एक ऐसा पात्र है जो वासना की छाया तले बाकी बची उम्र गुजारने के लिए अपनी भोली और 14 वर्षीय लड़की तक की बलि चढ़ाने को तैयार है। इतना ही नहीं, वह रुपया भी खर्च कर सकता है। वासना तृप्ति के लिए लालाई चौधरी का यह वाक्य देखिए, हमारे में यह रिवाज है बाबूजी, बराबर का रिश्ता हो तो दो घर आपस में लड़कियां बदल लेते हैं, मैं जाकर अपने जैसा ही कोई घर देखूंगा। तीन, नोट: एक, बनिया बनाम इश्क, सारिका 1973, पृष्ठ 16। दो, वारिस, हक हलाल कहानी, पृष्ठ 154। तीन, पहचान, वासना की छाया में, पृष्ठ 146। पृष्ठ 82। कहानी में एक ओर तो धन दौलत के सहारे औरत के गर्भमास की आवश्यकता का अनुभव करने वाला चौधरी है, जो यौन संदर्भों को ही जीवन की सारी जमा पूंजी समझता है, और दूसरी ओर कहानीकार का यह संकेत है कि परिस्थितियों की विवशता व लोलुपता के कारण मानवीय संबंधों की मर्यादा गर्त में जा रही है। गुनाह बे लज्जत का सरदार सुंदर सिंह पैसा देकर सुंदरी के साथ कुछ समय व्यतीत करता है और स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। यो कहानी में पति पत्नी के संबंधों के बीच एक हल्की सी उदासी की छाया का आभास भी होता है। मूलतः यह यौन संबंधों की कहानी है। मिट्टी के रंग में मानव संबंधों का एक और रूप भी है। मिस्र में स्थित भारतीय सेना के दो सैनिक मैथिलोन और सदानंद अपने मनोरंजन के लिए साथ साथ घूमने जाते हैं। सदानंद बहुत भावुक है, उसे पत्नी और घर की याद आती है। एक दिन बाद उसे फ्रंट पर जाना है। मैथिलोन अपना समय बिताने के लिए एक सोसाइटी गर्ल के पास जाता है। युद्ध में सदानंद मरते हुए मैथिलोन की जेब से एक पत्र और डिबिया निकालता है। वह पत्र और डिबिये अंगूठियां उसकी बहन के लिए हैं। सदानंद भी युद्ध में मारा जाता है और सिपाही महानंद उस डिबिया और पत्र को पाकर उन्हें सही जगह भेजना चाहता है, किंतु अपनी एक रात की प्रेमिका को दोनों अंगूठियां उपहार स्वरूप दे देता है। महायुद्धों की विभीषिका ने मानव प्रेम संबंधों को किस सीमा तक प्रभावित किया है, यही यह कहानी का प्रतिपाद्य है। सेफ्टी पिन में आधुनिक उच्च वर्गीय स्त्री पुरुषों के संबंधों पर यथार्थवादी शैली में प्रकाश डाला गया है। इनके अतिरिक्त प्रेम का छायावाई रूप भी चांदनी के स्याह दाग जैसी कहानी में मिलता है। यह एक भावना प्रधान आदर्शवादी प्रेम कहानी है। भिक्षु भी इसी शैली की कहानी है। इसमें बौद्ध विहार के युवक के प्रति प्रेम का स्फुरण होता है, किंतु वह उसके लिए ग्लानि का अनुभव करता हुआ चला जाता है। इस प्रकार के कहानियों का क्षेत्र राकेश का असली क्षेत्र नहीं है।